वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम स्कंद दसवा अध्याय क्रमांक 23 श्लोक क्रमांक 13 तदुपाकर्ण्य भगवान् प्रहस्य जगदीश्वरः व्याजहार पुनर्गोपां दर्शयन् लौकिकीं गतिम् तदुपाकर्ण्य भगवान् प्रहस्य जगदीश्वरः व्याजहार पुनर्गोपां दर्शयन् लौकिकीं गतिम् उसे उपाकर्ण्य सुनकर भगवान ने प्रहस्य हंसकर जगद ईश्वरः संपूर्ण ब्रह्मांड के नियंता व्याजहार संबोधित किया पुनः फिर गोपान ग्वाल बालों को दर्शयन दिखलाते हुए लौकिकिम सामान्य जगत का गतिम मार्ग अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा जो कुछ हुआ था उसे सुनकर ब्रह्मांड के स्वामी भगवान हंसने लगे। तत्पश्चात उन्होंने पुनः ग्वाल बालों को इस जगत में जिस तरह लोग कर्म करते हैं उस मार्ग को दिखलाते हुए संबोधित किया। तात्पर्य अपनी हंसी द्वारा भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों को इंगित किया कि उन्हें कर्मकांडी ब्राह्मणों से नाराज नहीं होना चाहिए, अपितु यह समझना चाहिए कि मांगने वाले को प्राय भीख नहीं दी जाती। ओम अज्ञान तिमिरान। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। सर्वप्रथम बंबई के किचन डिपार्टमेंट की ओर से हमारे नासिक की जितनी माताएं जिन्होंने राधानाथ महाराज की व्यास पूजा में कितनी चपातियां बनाई थी, 8700 चपातियां बनाई, तो उनकी ओर से वो कोटि कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त कर रहे हैं आप सबका। विशेष रूप से गौरांग प्रभु और राधा वल्लभ प्रभु वो इतने प्रसन्न थे। गौरांग प्रभु ने कहा कि बेस्ट क्वालिटी चपाती आज तक, और वो कहे कि अगली जो यात्रा होगी महाराज की तो उसमें नासिक के ही माताओं को ये सेवा देना चाहते हैं। और राधा वल्लभ प्रभु कह रहे थे कि वो बहुत सबसे लास्ट में उन्होंने प्रसाद लिया, और अंतिम चपाती भी पहली चपाती की तरह नरम थी, वो कह रहे थे, और ताजी लग रही थी। तो हम भी आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि एक बहुत यूनिक और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था ये, तकरीबन 9,000 चपातियां बनाना। बम्बई के कई भक्त जिनसे मैं मिला तो उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी चपातियां एक रात में कोई बना सकता है, और वो भी बम्बई से 3 घंटा दूर, और वो ट्रांसपोर्ट होकर व्यास पूजा के लिए इतनी ताज़ा तरीके में वो सबको ऑफर कर सकते हैं। तो ये भक्तों का उत्साह, विशेष रूप से जानकीनाथ प्रभु, इनका कॉन्फिडेंस। जानकीनाथ प्रभु को मैंने कुछ 5-10 बार पूछा था कि आप कन्फर्म्ड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, कर लेंगे, क्योंकि महाराज की व्यास पूजा में देश विदेश से आने वाले हैं भक्त, केवल 40 गांव लासलगांव यहां से नहीं। और ये ऐसे डिवोटीज हैं जो हाल ही में मायापुर यात्रा के प्रसाद का स्टैंडर्ड चेक कराए हैं, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं जानकीनाथ प्रभु से कंफर्म कर रहा था। जानकीनाथ प्रभु वो कॉन्फिडेंट इतने थे, उन्होंने कहा कि हाँ क्यों नहीं, वैष्णव की कृपा और महाराज की कृपा होगी तो हो जाएगा, और वो उनका कॉन्फिडेंस पूरा हुआ। आशा करते हैं ऐसा ही कॉन्फिडेंस आपका बना रहे। तो हमारा भी कुछ वही प्रसंग चल रहा है। ब्राह्मण पत्नियों ने कृष्ण बलराम के लिए अवश्य ही चपातियां भेजी होंगी। तो कार्तिक से पहले हमने प्रसंग प्रारंभ किया था ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार, और हाँ पत्नियों के साथ उनके पतियों का भी उद्धार भगवान ने किया। और हमने प्रारंभ इस प्रसंग को किया कि भगवान 8 शिक्षाएं इस प्रसंग के द्वारा हमें सिखा रहे हैं। इन 8 शिक्षाओं में से हमने 3 शिक्षा पर चर्चा की, और पिछले सेटिंग में मेरे ख्याल से चौथी शिक्षा पर हम थे। पहली शिक्षा भगवान की यह कि भगवान जब कुछ मांगते हैं तो स्वयं के लिए नहीं मांगते। भगवान ने अपने सखाओं को भेजा भिक्षा मांगने के लिए इन ब्राह्मणों से, तो भगवान भूखे नहीं थे, अभी तो भगवान जो कि अंतर्यामी है जान गए कि ये जो मेरे सखा हैं ये भूखे हैं। तो अपने सखाओं के लिए भगवान ने स्वयं के लिए भिक्षा मांगने के लिए भेजा। तो सबसे पहली शिक्षा ये थी, कृष्णा नेवर डिमांड्स फॉर हिमसेल्फ। परंतु जब ये गए मांगने के लिए कृष्ण बलराम के लिए, तो ये सारे जो ब्राह्मण यज्ञ में लगे हुए, इतने व्यस्त कि जिनके लिए वो यज्ञ कर रहे हैं, जो यज्ञ भुक भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं को भोग अर्पित करना ये भूल गए। तो दूसरी शिक्षा ये, वी शुड नेवर लूज फोकस ऑन अवर सर्विस, द गोल ऑफ आवर सर्विस। जैसे कि ये ब्राह्मण भूल चुके कि उद्देश्य क्या है यज्ञ करने का। और तीसरी शिक्षा, कृष्णा कीप्स सेंडिंग रिमाइंडर्स, हमें संकेत भेजते रहते हैं भगवान हमारी साधना भक्ति में। साधना भक्ति के पूरे जीवन काल में भगवान अलग अलग प्रकार से संकेत, रिमाइंडर्स, चेतावनी सावधान करेंगे हमें कि कैसे हम हमारी भक्ति में सचेत रहें। जैसे भगवान ने रिमाइंडर्स भेजा इन ब्राह्मणों को। और फिर चौथी शिक्षा जिसकी हमने चर्चा प्रारंभ की थी, भगवान आज के श्लोक में भी कह रहे हैं कि जो प्रचारक होते हैं ये सखा, एक दृष्टिकोण से भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए, जैसे कि एक प्रचारक करता है, यहां पहुंचे थे और ये रिजेक्ट हो गए। तो अब सोचिए कि डायरेक्ट प्रतिनिधि भगवान के, जिनको भगवान ने डायरेक्टली भेजा भिक्षा मांगने के लिए। हम लोग यहां पर कुछ भक्तों के कॉन्फिडेंस की चर्चा कर रहे थे। सोचो कि कोई कहे कि भगवान में कितना कॉन्फिडेंस होगा कि भगवान ने जिनको भेजा तो कार्य पूरा होगा, है ना। कोई साधारण सा बॉस भी इस संसार में जब अपने प्रतिनिधि को कुछ कार्य करने के लिए भेजता है और अगर सामने वाली पार्टी रिजेक्ट कर देती है तो कितना अहंकार को ठेस पहुंचता है कि अरे मैंने भेजा और मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, ऐसी हिम्मत। तो यहां पर सोचिए सारे बॉसों के जो बॉस हैं भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने अपने डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव को भेजा और इनको रिजेक्शन मिला। और आज के श्लोक में भगवान प्रहस्य हंस रहे हैं और भगवान ये कह रहे हैं कि यही मैं सिखाना चाहता था। अब ये जो शिक्षा है, चौथी शिक्षा, ये चौथी शिक्षा न तो ब्राह्मणों के लिए है न ब्राह्मण पत्नियों के लिए, ये चौथी शिक्षा है किसके लिए, ये ग्वाल सखाओं के लिए। कि आप जब मेरे प्रतिनिधि बनकर जाओगे तो मेरे प्रतिनिधि भी बनकर जाओगे तब भी आपको रिजेक्शन मिलेगा, ये भूलना मत। ये मत समझना कि क्योंकि मेरे प्रतिनिधि हो तो कौन माई का लाल है जो रिजेक्ट करेगा तुमको, नहीं। इसे भगवान ये दो चीजें सिखा रहे हैं, एक तो प्रचारक को कितना सहनशील होना चाहिए, कितना विनम्र होना चाहिए, कितना धैर्यवान होना चाहिए, और दूसरी शिक्षा ये है भगवान ये भौतिक संसार का स्वरूप बता रहे हैं कि भौतिक संसार का स्वरूप ये है कि यदि बद्ध जीवों को इस संसार के आप भगवान का महाप्रसाद भी खिलाओ परंतु फिर भी वो आकर्षित रहते हैं केवल इस भौतिक संसार के तुच्छ भोगों के प्रति। और ऐसा होता है, कई ऐसे दुर्भाग्य जीव हम हमारे प्रचार में भी देखते हैं। उनको आप शुद्ध कृष्ण भक्ति का ज्ञान दो, उनको आप भगवान का शुद्ध महाप्रसाद खिलाने की कोशिश करो, उनको आप भगवान का शुद्ध हरिनाम लेने के लिए कहो, नहीं, वो सब छोड़कर केवल इस गंदगी भरे भौतिक संसार की चीजों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। तो ये जो चौथी शिक्षा, रिजेक्शन इन प्रीचिंग, हम इस पर चर्चा कर रहे थे। आज भी हम केवल इसी मुद्दे को पूरा करने की कोशिश करेंगे। काफी डीप पॉइंट है, ये डीप लेसन है भगवान का। तो इसमें एक सब पॉइंट हमने डिस्कस किया था, नेवर अंडर एस्टिमेट प्रीचिंग एफर्ट्स। हमको ये नहीं समझना चाहिए कि अगर मुझे रिजल्ट मिल रहा है प्रीचिंग में तभी मुझे प्रीचिंग में उत्साह मिलेगा, क्योंकि ये जो रिजल्ट है प्रीचिंग का, यदि मैं पूछूं कि जितने प्रचारक हुए हैं आज तक और जितने प्रचारक होंगे और जितना उन्होंने प्रचार किया है, यदि मैं पूछूं, कोई प्रामाणिक प्रचारक के विषय में मैं बोल रहा हूं कि जो प्रामाणिक प्रचारक हुए हैं, हैं और होंगे, यदि मैं पूछूं कि क्या वो अपने प्रचार कार्य में सफल रहे या असफल रहे, क्या कहोगे आप? कोई भी ऐसा प्रचारक जो प्रामाणिक है और भगवान का प्रामाणिक प्रचार कर रहा है न भूतो न भविष्यति, वो कभी असफल नहीं रह सकता, क्योंकि भगवान ने ही कह दिया है। हमें क्या लगता है, हमारा कैलकुलेशन क्या होता है कि इस जन्म में मेरे आंखों के सामने वो सोलामाला क्यों नहीं शुरू कर रहा। ये हमारा कैलकुलेशन रहता है, लेकिन भगवान का कैलकुलेशन क्या है? भगवान केवल ये कुछ जो साल उसके इस जन्म के, उसको नहीं देख रहे भगवान। हमने बीज बोया, हमने पानी भी डाला होगा, परंतु भगवान देख रहे हैं कि हो सकता है कि फल जो है वो दो जन्म बाद आए इस पेड़ में, लेकिन फल आएगा। नेहा भिक्रम नाशोस्ति, कि कभी उसका नाश नहीं हो सकता, कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से वो भगवान श्री कृष्ण से आकृष्ट होगा ही। तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, इसलिए भगवान यहां पर हंस रहे हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि तुमको रिजेक्शन मिला है, लेकिन ये लोग एक्सेप्ट करने वाले हैं और बस कुछ ही समय में करने वाले हैं। तो हमारा जो सब पॉइंट था इसके अंदर, नेवर अंडर एस्टिमेट द प्रीचिंग एफर्ट्स, और हमने काफी उदाहरण भी इसमें लिए थे। एक उदाहरण फिर से दोहराएंगे, जटायु और मारीच का लिया था, जटायु का नहीं। अब जटायु जिन्होंने सीता देवी, जो कि भक्ति की मूर्तिमान स्वरूप है सीता देवी, तो स्वयं साक्षात भक्ति की मूर्तिमान स्वरूप सीता देवी को जटायु रावण के चंगुल से निकालने की कोशिश की। तो प्रचारक भी क्या कर रहा है, सब बद्ध जीवों के हृदय में जो भक्ति है वो उनके ही हृदय में जो बैठा हुआ रावण है उसकी चंगुल से निकालते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रचारक की भूमिका क्या है, जैसे जटायु की जो भूमिका थी। और जटायु के साथ क्या हुआ, बाहरी दृष्टिकोण से जटायु असफल रहे। और इसके विपरीत उदाहरण है मारीच, कि मारीच प्रचारक था रावण का, जटायु प्रतिनिधि थे रामचंद्र जी के, मारीच था प्रतिनिधि रावण का। तो जटायु और मारीच की तुलना में मारीच सफल रहा और जटायु असफल रहे। परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, प्रभु श्री राम की दृष्टिकोण से, भक्ति के दृष्टिकोण से, मारीच हालांकि मरते मरते वो नाम ले रहा था लक्ष्मण सीते इनका, परंतु उसको सदगति प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि आंतरिक चेतना थी कि मैं रावण की सेवा में हूं। और जटायु रावण के हाथ मारे गए। अब इसमें भी देखिए एक और कॉन्ट्रास्ट, कि मारीच प्रभु श्री राम के हाथ मारे गए और जटायु रावण के हाथ, परंतु अंतिम संस्कार जटायु का स्वयं भगवान श्री राम ने किया और आज तक जटायु पूजे जाते हैं। हम लोग भली भांति जितने सब आते हैं भक्त, सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं जटायु के ताकेद के मंदिर को देखकर। एक ही है पूरे विश्व में जटायु का ये मंदिर। तो देखिए त्रेता युग में ये जो प्रसंग हुआ, आज तक जटायु पूजे जा रहे हैं। और मारीच जो त्रेता युग में सफल रहा, तथा कथित सफलता मारीच की, आज तक लोग उसको कंडम मानते हैं मारीच को। इसलिए ये जो दो उदाहरण है इसमें से समझ में आ रहा है कि हमें बाहरी सफलता और असफलता से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये समझना चाहिए कि यदि हम प्रामाणिक रूप से जटायु की तरह यदि प्रयास करें सीता देवी को रावण के चंगुल से निकालने का, तो वो हमारा प्रयास नित्य काल तक पूजनीय रहेगा जैसे जटायु। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिसकी हमने चर्चा की थी कि हमारे प्रचार में हमें समझना है कि क्या हम दो चीजें, क्या हम उनको कन्वर्ट करने के लिए प्रचार कर रहे हैं या इंस्पायर करने के लिए प्रचार कर रहे हैं। आर वी प्रीचिंग फॉर कन्वर्जन और इंस्पिरेशन? कन्वर्जन मींस यू बिकम लाइक मी, दैट्स फैनेटिक अप्रोच। इंस्पिरेशन मींस यू बिकम कृष्णा कॉन्शियस, डोंट बिकम लाइक मी, यू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। बंबई में हमने एक सेमिनार तैयार किया था, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो बहुत उसके अंदर हमने रिसर्च की थी कि क्या क्या अलग अलग आजकल के तरीके हैं पब्लिक स्पीकिंग के, जो हम हमारे कृष्ण भक्ति में प्रचार में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेमिनार के एंड में, हालांकि बहुत कुछ डिस्कशन हुआ था कि ऑडियंस किस प्रकार का होना चाहिए, पहले से प्रचारक को जानना चाहिए, इतने डिटेल्स उसके अंदर हमने डिस्कस किए थे कि प्रचार जो लेक्चर जो दे रहा है उसका प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए लेक्चर का, फिर लेक्चर देते समय जो वॉइस मॉड्यूलेशन है वो किस प्रकार का होना चाहिए, एग्जाम्पल स्टोरीज फिलोसॉफिकल पॉइंट्स उसका प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए, सब इतने सारे डिटेल्स थे। तो मैंने जब फीडबैक लिया इस सेमिनार के पश्चात, तो सबके लिए इतना जो मैंने रिसर्च किया था, इनमें से सबसे स्ट्राइकिंग पॉइंट उनको क्या लगा मैं बताना चाहता हूं। जो सबसे स्ट्राइकिंग पॉइंट उनको लगा वो था लास्ट पॉइंट इस सेमिनार का, और लास्ट जो स्लाइड इस सेमिनार की उसका टाइटल था, हाउ विल यू असेस दैट योर प्रीचिंग वॉज सक्सेसफुल प्रीचिंग। जय श्री राधा मदन गोपाल भगवान की। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ विल यू असेस, कैसे आप जानेंगे कि आपने जो प्रचार किया वो सफल रहा। केवल एक लाइन में इसका आंसर था, और ये सबको, मैंने दो तीन दफे सेमिनार लिया, हमारे बेस जो क्लासेस शुरू हुए थे बॉम्बे में तो उनके लिए ये एक टॉपिक रखा था, तो सबने यही लास्ट स्लाइड के ऊपर अपना फीडबैक दिया। तो इसका आंसर ये था, हाउ टू असेस वेदर योर प्रीचिंग वॉज सक्सेसफुल, आफ्टर योर लेक्चर If the audience leaves the hall thinking about Krishna more than you, then you were successful in your preaching. And if the audience is leaving the hall thinking about you more than Krishna, then there was some problem. You didn't present as it is. तो यहां पर जब हम कन्वर्जन और इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं कि भक्तों को जो भी आ रहे हैं हमारे प्रचार के संपर्क में आ रहे हैं उनको कृष्ण भावना भावित बनाना है, न कि मैं क्या कर रहा हूं मेरी तरह बनो, नहीं, वो कन्वर्जन है। वो तो बहुत चल रहा है बाहर, आप जानते होंगे, कन्वर्जन तो बहुत चल रहा है। यहां पे प्रभुपाद ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जीवन में लाने के लिए कृष्ण भक्ति दिए हमें, इसलिए प्रचार में हम करते क्या है, हमने जो कृष्ण भक्ति का अनुभव लिया है, जो साक्षात्कार लिया है, उसको शेयर करते हैं। वी आर शेयरिंग अवर कृष्ण कॉन्शियसनेस, दैट इज रियल प्रीचिंग। अब इसके आगे मैं एक सीक्वेंस के ऊपर सोच रहा था, प्रचार का जो सीक्वेंस किस प्रकार से होता है। अब ये मत समझिए कि प्रचारक केवल वही होता है जो व्यासासन पर बैठकर लेक्चर दे रहा है। नहीं, हमें इस भ्रांत धारणा में नहीं रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको, जो विशेष रूप से भारत में पैदा हुए हैं, हम सबको पहले से ही ये पोस्ट दे दिया है कि हम सब क्या होने चाहिए, प्रचारक होने चाहिए। तो इसमें मैंने एक उदाहरण सोचा, पता नहीं आजकल ये लोग इस्तेमाल करते हैं क्या, ये फेयर एंड लवली क्रीम आजकल भी प्रचलित है। पहले बहुत है, फेयर एंड लवली लोग लगाते थे बहुत, कि लगाने से फेयर हो जाएंगे, लवली हो जाएंगे। उनके लिए भी है। तो कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावनामृत जो है, और आध्यात्मिक संसार, उसको ये टाइटल दे सकते हैं हम, इट इज फेयर एंड इट इज लवली। और भौतिक संसार इसका ऑपोजिट है, भौतिक संसार इज अनफेयर एंड अगली। तो मान लो कि अगर हम यही जो फेयर एंड लवली क्रीम का उदाहरण ले, तो सबसे पहले कोई व्यक्ति इसको लगाना प्रारंभ कब करेगा, जब वो सुनेगा। तो फर्स्ट सीक्वेंस क्या है, हियरिंग। उसको जाके कोई कहता है कि ये जो फेयर एंड लवली क्रीम है, इसके अंदर इतनी सारी जड़ी बूटियां हैं, इसके अंदर एलोवेरा है, इसके अंदर ककड़ी है, हनी है, हल्दी है, हींग, हींग भी होता है क्या? इसके अंदर ये सब है। वो देखिए, वो लोग लिखते भी हैं उसके ऊपर पूरा, उसके अंदर क्या क्या है। और टीवी में जो एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, सब ऐसे एक एक आइटम ऐसे उड़ते हुए आते हैं, फिर वो ट्यूब के अंदर जा रहे हैं, ऐसे एक तरफ से हल्दी उड़ते हुए आ रही है, एक तरफ से एलोवेरा, ककड़ी, सब वो ट्यूब के अंदर। और फिर जिसने लगाया उसका आधा चेहरा काला दिखाते हैं, फिर आधा चेहरा बिफोर आफ्टर उस हिसाब से। तो जब कोई सुनता है, अरे इसके अंदर ये सब गया है, ये इतनी सी ट्यूब के अंदर इतना सब कुछ डाला हुआ है। सो द फर्स्ट स्टेप इज हियरिंग, हियरिंग अबाउट फेयर एंड लवली। तो श्रवण करने से अब उसके अंदर एक आकर्षण जागृत हुआ है, आकर्षण और कॉन्फिडेंस। क्या कॉन्फिडेंस? कि हाँ, जब इतना सब कुछ इस क्रीम के अंदर इन्होंने डाला है, तो कुछ तो दम होगा इस क्रीम के अंदर। तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है उसको लगाने का, लेकिन फिर भी अभी कच्चा पक्का है कॉन्फिडेंस। तो हियरिंग से थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, फिर वो सोचता है कि खरीदने से पहले, लगाने से पहले मैं देख लेता हूं कि जिन्होंने लगाया है ये, वो लोग फेयर एंड लवली हुए हैं क्या। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो जाके देखता है कि हाँ, अच्छा इसने, इसको तो मैं जानता हूं, ये तो 5 साल पहले एकदम भैंस की तरह काला था, ये अच्छा तुमने ऐसे हो गए तुम। हाँ, मैं ऐसे हो गया। तो पहले उसने जो सुना, उसके अंदर जो थोड़ा कॉन्फिडेंस पैदा हुआ था, अब देखने के बाद उसका जो कॉन्फिडेंस है वो और रीइंफोर्स हो रहा है, और उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप, अब वो स्वयं अपने ऊपर लगाता है ना। और जब वो स्वयं अपने ऊपर लगाता है, और फिर जब डिफरेंस देखता है, तब उसका कॉन्फिडेंस 100% हो जाता है। और जब उसका 100% वो कॉन्फिडेंस हो जाता है एप्लीकेशन के बाद, फिर जो फोर्थ और फाइनल स्टेप क्या है, अब वो दूसरों को प्रचार करता है कि ये फेयर एंड लवली लगाने से क्या होता है। तो ये है चार स्टेजेस, हियरिंग अबाउट फेयर एंड लवली, सीइंग अदर्स हु हैव अप्लाइड फेयर एंड लवली एंड द रिजल्ट्स इन देम, देन वन सेल्फ अप्लाइंग इट एंड सीइंग द रिजल्ट। अब इसमें देखिए, एंड फोर्थ इज प्रीचिंग टू अदर्स। अब इसमें देखिए, अगर एक भी सीक्वेंस में कुछ गड़बड़ हुआ तो उसका जो लास्ट प्रचार है उसमें गड़बड़ होगा। अगर उसके हियरिंग में गड़बड़ है और फिर भी लास्ट स्टेप में जाके वो प्रचार कर रहा है, तो उसने जो गड़बड़ हियरिंग किया है उसका प्रचार करेगा। अगर उसने हियरिंग में सुन लिया कि हल्दी के बदले अदरक है इसमें, तो प्रचार में क्या आएगा कि फेयर एंड लवली लगाइए, इसके अंदर एलोवेरा है, अदरक है। तो लोग भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये गले के लिए है कि स्किन के लिए। तो अगर उसका हियरिंग गड़बड़ है तो लास्ट स्टेज में गड़बड़ होगा। और नेक्स्ट, उसने ऐसे लोगों को वो मिला, ऐसे भी लोग होंगे जो 10 साल से घिस रहे हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ा उनको। तो अगर वो ऐसे लोगों के संपर्क में आया जो 10 साल से चैंटिंग कर रहे हैं, जो 10 साल से प्रोग्राम में आ रहे हैं, हियरिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा है, एज इट इज जैसे थे। तो अगर वो ऐसे लोगों से संपर्क में आ जाता है तो फिर फाइनली उसका अगर वो प्रचार भी करता है तो उसका प्रचार वो क्या करेगा, क्या कहेगा वो, ट्राई कर लो, पता नहीं 10 साल में आपका कुछ बन जाए बात। माला तो मैं दे रहा हूं आपको, ये माला लो आप, मिनिमम 10 साल पता नहीं, तो कल लग गया आपका तो ठीक है। तो उसका प्रचार कैसा रहेगा अगर उस ऐसे लोगों को उसने देखा है, तो उसका प्रचार वैसे रहेगा। और फिर उसने जो एप्लीकेशन खुद के ऊपर किया, और खुद के ऊपर एप्लीकेशन करने के बाद भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, तब भी उसका जो प्रचार रहेगा वो उसी अनुसार रहेगा कि भाई मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूं। मानो कोई व्यासासन पर बैठकर लेक्चर दे रहा है, हरिनाम पर सेमिनार दे रहा है कि मैं 10 साल से हरिनाम कर रहा हूं अभी तक। अब क्या बताऊं आपको, व्यासासन पे बैठ के शर्म भी आती है बताते। अगर वो ऐसे बोलने लग जाए तो कितने लोग उत्साही होके स्टॉल से जाके माला लेंगे। तो ये जो लास्ट स्टेज है प्रीचिंग अबाउट फेयर एंड लवली, ये जो लास्ट स्टेज है, ये लास्ट स्टेज हमारा असरदार इफेक्टिव कब रहेगा, जब पहले तीन स्टेजेस हमारे बोनाफाइड रहेंगे, हियरिंग, सीइंग एंड एप्लीकेशन। तो इसलिए मैंने ये उदाहरण लिया कि अभी वो आप वो क्रीम में मत फंसिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज फेयर एंड लवली। वॉट एवर कृष्णा डज विथ हिज डिवोटीज, वेदर ही इज अ न्यू कमर और ओल्ड टाइमर, इट इज ऑलवेज फेयर एंड इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लवली। एंड वॉट एवर माया देवी डज, रिमेंबर द ऑपोजिट ऑफ फेयर एंड लवली, इट विल बी अनफेयर एंड इट विल बी अगली। तो अब हम अगर शास्त्र से कुछ उदाहरण लें, सबसे पहला उदाहरण मेरे ध्यान में आया सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी जो कि एक ब्रह्मवादी थे पहले, ब्रह्मवादी मतलब इम्पर्सनलिस्ट, और सुखदेव गोस्वामी का परिवर्तन कैसे हुआ जब व्यासदेव उनके पिता अपने कुछ शिष्यों को भेजे जंगल में सुखदेव गोस्वामी को भागवत के श्लोक सुनाने के लिए। तो सुखदेव गोस्वामी पैदा होते ही निकल गए जंगल की ओर, व्यासदेव जी ने अपने शिष्यों को भेजा कि जाओ जाओ, और ये सुखदेव मेरे पुत्र को वापस लाने का एकमेव तरीका है कि जो ब्रह्मवाद से ऊंचा आकर्षण है वो मैं दूं इनको, और वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति का आकर्षण। तो व्यासदेव ने जब अपने शिष्यों को भेजा तो व्यासदेव जी के शिष्य, अब जो सोचिए भागवत कितना 18,000 श्लोक है, उसमें से उन्होंने सुखदेव गोस्वामी, जंगल में सुखदेव गोस्वामी विचरण कर रहे हैं और व्यासदेव जी के शिष्य, हालांकि वो गए सुखदेव गोस्वामी को टारगेट बनाकर, भेजा गया उनको सुखदेव गोस्वामी को टारगेट बनाकर, लेकिन वो जंगल में ऐसे कुछ जैसे फूल इकट्ठा करने के लिए इस बहाने से वहां घूमना शुरू किए। तो सुखदेव गोस्वामी को ये न लगे कि हम आपके लिए आए, तो इस बहाने से वो श्लोक बोलना शुरू किए। और कौन सा श्लोक उन्होंने कहा? जो कि सुखदेव गोस्वामी के न केवल कानों को आकर्षित लगा बल्कि उनके हृदय को जिसने आकर्षित कर लिया। अहो बकियम स्तनकालकूटम जिघाम शया पाययदप्य साधवी लेभे गतिम धातृचितम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। पूतना उद्धार का ये श्लोक कि पूतना जैसी राक्षसी दुर्जर विष लगाकर आई भगवान श्री कृष्ण जो 6 दिन के थे उनको मारने के लिए, ऐसी पूतना राक्षसी को भगवान ने गोलोक वृंदावन में अपने धात्री का पद दिया, अपनी माता का पद दिया। कम वा दयालुम, ऐसे दयालु भगवान या इनसे दयालु भगवान और कौन हो सकते हैं? जब सुखदेव गोस्वामी ने यह सुना तो सुखदेव गोस्वामी, अब उन्होंने अपने ब्रह्मवाद का परित्याग किया। और ये सुखदेव गोस्वामी, इन्होंने ऐसा पक्का श्रवण पूतना उद्धार का किया और उसके पश्चात फिर पूरी भागवत अपने पिता से सुनी। ये तो केवल एक ट्रेलर, एक सैंपल दशम स्कंद से, और फिर पूरी भागवत उन्होंने अपने पिता व्यासदेव जी से सुनी। और फिर जब वो प्रीचिंग कर रहे हैं, अब हियरिंग करने के बाद ऐसा पक्का उनका हियरिंग हुआ, उनको साक्षात्कार मिला, उन्होंने अपने जीवन में भगवान की भक्ति को अप्लाई किया, और फिर जब उन्होंने परीक्षित महाराज को सुनाया, मतलब प्रचार किया, तो उसमें हमारे आचार्य कहते हैं कि पूतना उद्धार की जब लीला आई दशम स्कंद में, तो बाकी राक्षसों के उद्धार का जो वर्णन उन्होंने किया उसकी तुलना में पूतना उद्धार का जो वर्णन है सबसे इलैबोरेट किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उसी लीला से उनका परिवर्तन हुआ था। तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि कृष्ण भक्ति में हम कितने सारे अंग हैं भगवान के भक्ति के, कितनी सारी लीलाएं हैं, नाम गुण रूप लीला भगवान। तो हम किसी एक अंग से हो सकता है कि सबसे ज्यादा आकृष्ट हों। जैसे हम देखते हैं इस्कॉन में कई जो भगवान के अर्च विग्रह से बहुत आकृष्ट हैं, तो उनके प्रचार में उस पर ज्यादा एम्फेसिस होता है। कोई हरिनाम से है, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन से है, कोई प्रसाद से है, तो उनके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस होता है। तो सुखदेव गोस्वामी किससे आकृष्ट थे? पूतना। तो जैसे पूतना उद्धार की लीला, तो सबसे इलैबोरेटली पूतना उद्धार की लीला सुना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तो यहां पर समझ में आ रहा है कि प्रीचिंग कितना सब्जेक्टिव है। ये नहीं कि सब एक प्रकार का प्रीचिंग करेंगे, नहीं, कोई भगवान से किस प्रकार से आकृष्ट होगा उस प्रकार से वो प्रीचिंग करेगा। जैसे श्रीमद् भागवत में एक और उदाहरण है, जड़ भरत। अब देखिए जड़ भरत, इन्होंने दूसरे प्रकार से साक्षात्कार लिया। सुखदेव गोस्वामी का साक्षात्कार क्या था? भगवान फेयर एंड लवली, वो एस्पेक्ट से। जड़ भरत इनका साक्षात्कार क्या था कि माया देवी कैसे अनफेयर और अगली है, तो उनका साक्षात्कार उससे उनको मिला और उसके आधार पर उन्होंने प्रीचिंग किया कि वो पहले महाराज भरत और फिर एक हिरण से आकृष्ट हुए और हिरण बन गए, और फिर हिरण बनने के पश्चात जड़ भरत बने वो। तो उनका उनके विषय में वर्णन है कि अब वो जब जड़ भरत बने तो वो बिल्कुल कोई चांस नहीं लेना चाहते थे, तो जानबूझ के वो अवधूत का जीवन जीते थे, एकदम जैसे कोई पागल व्यक्ति है कि दुनिया के नजरों में दुनिया उनको पागल कहे, अवधूत कहे, नाकारा बोले। क्यों जानबूझ के ऐसा वो करते थे? ताकि कोई भी प्रकार का आकर्षण अब पैदा न हो उनके अंदर। और फिर हम ये कथा जानते हैं कि महाराज रघुगण, उनको जब उन्होंने प्रचार किया, सबसे पहले बार जब उन्होंने अपना मुंह खोला प्रचार के लिए, तब तक जड़ भरत अपना मुंह भी नहीं खोले थे, ऐसे थे कि उनके जो भाई वो जड़ भरत को, ये जो स्केयरक्रो होता है ना खेत में, पुतला ऐसा खड़ा रहता है कौओं को चिड़ियों को भगाने के लिए, इंग्लिश में उसको स्केयरक्रो बोलते हैं, ये कुछ काम का नहीं, ना तो हमारे खेती के काम आता है ये, ना खेती कर सकता है, ना व्यवसाय कर सकता है, ना नौकरी कर सकता है, तो ये इतना भारी भरकम इसका शरीर है, खड़ा कर दो इसको तो कम से कम हमारे खेत में कौवे चिड़िया ये तो नहीं आएंगी। तो खड़े रहते थे जड़ भरत ऐसे जानबूझ के, हालांकि इतने साक्षात्कारी जो कि अपने एक जन्म में महाराज भरत रहे हुए खेत में ऐसे खड़े, चिड़िया आके उनके ऊपर चोंच मार रही, कौवे चोंच मार रहे, खड़े ऐसे। और फिर महाराज रघुगण वहां के जो राजा पालकी में जा रहे थे, तो एक उसमें जो उनको उठा रहे थे नहीं थे, या वो बीमार हो गए नहीं उठा पा रहे थे, तो फिर इनको पकड़ा, जड़ भरत को पकड़ा। और जड़ भरत वहां पर वो देख रहे थे कि वो किसी चींटी को भी न मारे, तो रुक रहे थे, दो कदम आगे ले रहे थे, तो पालकी हिल रही थी। महाराज रघुगण इतना क्रोधित हुए, और जब वो क्रोध अवस्था में जड़ भरत को भला बुरा कहने लगे, तो जड़ भरत ने फिर प्रचार जो किया वो ऐसा स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी है फिफ्थ कैंटो में, फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट, कि महाराज रघुगण कांपने लगे कि ये व्यक्ति जो दिखने में पागल दिख रहा है, एकदम जड़, नाम भी क्या जड़, जड़ भरत, जड़ दिख रहा है ये, एकदम प्राणी की तरह, जानवर की तरह, लेकिन इसकी जो वाणी है ऐसी साक्षात्कारी वाणी। तो सुखदेव गोस्वामी का उदाहरण था, ही गॉट अट्रैक्टेड बाय द फेयर एंड लवली एस्पेक्ट ऑफ कृष्णा, जड़ भरत गॉट रियलाइज्ड बाय द अनफेयर एंड अगली एस्पेक्ट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, एंड दैट्स हाउ हिज प्रीचिंग वाज। तो कई बार आप देखोगे कि कई हमारे प्रचारक होते हैं, उनके लेक्चर्स एकदम स्वीट होते हैं, कृष्ण लीला, माखन चोर, तो वो शायद उससे आकर्षित होंगे। कई प्रचारक होते हैं, उनके लेक्चर, आप लोग सब बैठे हो, आपको क्या पता आपकी मृत्यु अगले क्षण आने वाली है, उनका लेक्चर ही वहां से चालू होता है। उनका फर्स्ट श्लोक होता है सर्वधर्मान परित्यज्य, 18.66 से शुरू करते हैं वो लेक्चर। तो आपने देखे होंगे कई प्रचारक एकदम, वो लोग स्वीट पास टाइम सुनाएंगे और ऑडियंस को ऐसा लगेगा हाँ कृष्ण भक्ति फेयर एंड लवली, कितना फेयर एंड, और कई वो माया देवी का अनफेयर एंड अगली रूप लेके सामने खड़ा करेंगे कि ये शरीर हमारा हार्ड मांस का मल मूत्र से भरा हुआ, इसके प्रति आकृष्ट है। हम लोग देखते हैं अपने आप को कि मैं लेक्चर में फेयर लवली क्रीम लगा के आया था। तो यहां पर जिस प्रकार से हमारा आकर्षण होगा कृष्ण कॉन्शियस फिलॉसफी की ओर, और दोनों बोनोफाइड है, दोनों बोनोफाइड है। इसलिए एक प्रीचर के विषय में कहा गया है कि प्रीचर किस प्रकार का होता है कि जब वो देखता है कि ऑडियंस वो भौतिक संसार में बहुत सेटल्ड है, अपने आप को बहुत सेटल्ड मान रहा है, तो अपने प्रीचिंग से उनको अनसेटल करता है पहले। और अगर उसने देखा कि ऑडियंस पहले से, आजकल कलयुग में ऑडियंस पहले से अनसेटल्ड ही आते हैं, अगर पहले से अनसेटल्ड हैं तो फिर वो उनको गोलोक वृंदावन में सेटल करने का प्रचार करता है। तो क्या कहते हैं प्रीचर को? प्रीचर इज दैट एक्सपर्ट पर्सन हु सेटल्स द अनसेटल्ड एंड अनसेटल्स द सेटल्ड। ये संक्षिप्त रूप में। एक बार मैंने ये उदाहरण दिया था, ये एक ब्रह्मचारी से मैं मिला था बहुत साल पहले, हंगरी के एक ब्रह्मचारी हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में आए थे, बिल्कुल इंग्लिश नहीं जानते थे, थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत मुझे आकृष्ट कर रहे थे। तो मैंने एक ट्रांसलेटर को लेकर आया और मैंने पूछा कि पूछो ये कैसे आए भक्ति में, तो बता रहे थे कि भक्ति में कैसे आए। मैं पहले भी इनका ज्वाइनिंग स्टोरी सुनाया हूं, लेकिन ये आज अपने पॉइंट के संदर्भ में। तो ये हंगरी के ब्रह्मचारी ये एक ऐसे ग्रुप के मेंबर थे इस्कॉन में आने से पहले कि जो एडवेंचर स्पोर्ट्स किया करते थे, और ऐसे ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट की हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। वहां पर वो कोई स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग की छत से कोई रॉड को बाहर लटकाते थे और उस पर जाके टंगते थे अपने आप। तो मैंने पूछा क्यों करते थे ऐसे, तो नीचे देखते थे फिर, और वहां की स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग मतलब 100 मंजिला ऐसी बिल्डिंग, वहां से रॉड से लटके हुए ऐसे नीचे देखते थे कि कैसा अंदर उनको, मराठी में बोलते ना वर खाली, कैसा लगता है। तो उस स्ट्रेस को, उस टेंशन को एक्सपीरियंस करने के लिए ऐसा करते थे वो। इंग्लिश में जिसको बोलते हैं गेटिंग द एड्रेनलिन रश, ये एक वर्ड है इंग्लिश का, एड्रेनलिन रश मतलब अंदर से वो तितलियां उड़ती हैं एकदम, वो एक्सपीरियंस करने के लिए। और फिर उन्होंने कहा कि एक ऐसा एक्सपीरियंस वो जब कर रहे थे इसी प्रकार का, तो क्या एक्सपीरियंस था कि पटरी पे खड़े होते थे ट्रेन की, और जब ट्रेन आती थी तो ट्रेन की दिशा में भागना शुरू करते थे, और फिर एकदम ट्रेन जब उनको टकराने वाली है तो फिर वो कूद जाते थे। अच्छा वो मरते नहीं थे, लेकिन वो एकदम नियर डेथ एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं वो सब एक्सपीरियंस करते थे। तो एकदम ट्रेन के इतना निकट आकर फिर कूद जाएंगे। तो मैंने पूछा ये क्यों करते थे अब? तो वो कहे कि हम लोग वो एकदम ट्रेन के, ट्रेन हॉर्न मार रहा है, वो ड्राइवर एकदम अंदर परेशान, ये सामने आ रहा है भागते हुए, तो जो ड्राइवर का चेहरा देखने मजा आता था। सोचिए अभी देखो लोगों को किस किस में मजा आता है, वो ड्राइवर का जो चेहरा देखने में मजा आता है, उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती थी। तो ऐसे ही ये एक बार कर रहे थे, और ये जब कूदे ऐसे ड्राइवर के चेहरे को देखकर, जब बगल वाली पटरी पर कूदे ट्रेन चली गई, तो अपने दोनों हाथों पर गिरे ये, और जब उठ रहे थे तो उन्होंने देखा शिल प्रभुपाद की फोटो, पटरी पर ईशोपनिषद किताब थी और उसका जो बैक कवर था प्रभुपाद की फोटो। तो उन्होंने जब प्रभुपाद की फोटो को देखा तो उनको लगा कि मैं जो इतना अजीबोगरीब सब कुछ में लगा हुआ हूं, ये व्यक्ति तो मुझसे भी ज्यादा अजीबोगरीब दिख रहा है, ये तिलक, शेवन हेड, सैफ्रॉन, ये क्योंकि उनका आकर्षण क्या था, अजीबो गरीब चीजों से, तो उनको प्रभुपाद बहुत अजीबो गरीब लगे, तो पटरी पे ही बैठ के वो पढ़ने लगे क्या है, वो बोल रहे थे, वो पटरी पे ही बैठा और ईशोपनिषद खोला, और ईशोपनिषद देखो सब प्रभुपाद की पुस्तकों में से ईशोपनिषद मिला उनको, और ईशोपनिषद आप अगर पढ़े होंगे तो उसके अंदर जो श्लोक है वो बहुत अजीबो गरीब श्लोक है कि भगवान अंदर भी हैं बाहर भी हैं, भगवान चल भी रहे हैं भगवान नहीं भी चल रहे, तन जति तन नहीं जति, इस प्रकार के श्लोक है। तो वो ये तो फिलॉसफी भी एकदम अजीबो गरीब है। देखिए लोगों को किस चीज से कहां आकर्षण हो जाएगा भगवान से, कभी नहीं बोल सकते हम। और फिर ये व्यक्ति वहां पर जो लोकल एड्रेस था इस्कॉन का वो बुक में, वो गए वहां पर, और वहां पर जब मंदिर में देखा उन्होंने कि अरे यहां पर तो अजीबो गरीब लोगों की खान है, जैसे एक डिवोटी मुझे बता रहे थे कि उनको आकर्षण किससे हुआ, वो जब सबसे पहले मॉर्निंग प्रोग्राम में आए। अब हम लोग तो भारत में रहने की वजह से हम जानते हैं कि आरती क्या होती है, प्रदक्षिणा क्या होती है, उनको कुछ पता नहीं है, गोल गोल क्यों घूमते हैं लोग, प्रदक्षिणा क्यों करते हैं, और वो भी एक पौधे को बीच में रख के प्रदक्षिणा कर रहे हैं। तो ये एक लंदन के एक माताजी शिष्य हमारे इस्कॉन के, तो बता रही थी कि जब सबसे पहली वो मंदिर में आई तो उन्होंने देखा वो हंसने लगी, तुलसी आरती चल रही थी, तुलसी आरती देखकर वो हंसने लगी। अभी सोचो सब लोग सीरियसली तुलसी आरती कर रहे हैं और वो हंस रही है, तो एक डिवोटी ने पूछा आप हंस क्यों रहे हैं, तो उन्होंने कहा मेरे को हंसी मतलब मैं सराहना कर रही हूं कि आप लोग एक पौधे को भी स्कर्ट पहना है। जैसे हम तुलसी महारानी को कपड़े वस्त्र पहना था, बोले आपने पौधे को भी स्कर्ट पहना है, तो मेरे को उसकी मैं सराहना कर रही हूं कि क्या आप लोगों का मूड है वर्शिप करने का। तो ये जो हंगरी के ये व्यक्ति ब्रह्मचर्य आगे जो बने, ये जब मंदिर में गए और मंदिर में इतने अजीब और गरीब लोगों को देखा, कोई यहां लंबा हो रहा है, कोई यहां लंबा हो रहा है, भगवान इधर हैं, इधर दंडवत कर रहे हैं, तो बहुत उसको लगा कि मेरे को तो ये एडवेंचर क्लब ज्वाइन करना चाहिए। फिर वो ब्रह्मचारी बने और फिर वो बोले कि आप जानते हैं कि मैं हर साल बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन में सबसे ज्यादा जो बांटता हूं पुस्तक वो ईशोपनिषद। जैसे सुखदेव गोस्वामी पूतना उद्धार को इलैबोरेट किए ना, वैसे ये सबसे ज्यादा ईशोपनिषद। अच्छा ये ईशोपनिषद बुक बहुत ही विशेष है प्रभुपाद ने जो हमको दी है। हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर के श्यामानंद प्रभु वो भी मुझे बता रहे थे कि वो जब पहली दफा राधा गोपीनाथ मंदिर में आए श्यामानंद प्रभु, तो उनको ईशोपनिषद बुक मिली हाथ में, और ईशोपनिषद बुक जैसे उन्होंने खोली तो वो बोल रहे थे कि मुझे ईशोपनिषद से कोई आकर्षण नहीं इतना हुआ, लेकिन उसके अंदर से जो अगरबत्ती की सुगंध आ रही थी बुक के अंदर से, तो हुआ क्या था कि वो ईशोपनिषद बुक जैसे हम लोग हमारे मैचलेस गिफ्ट स्टॉल में रखते हैं ना, सब चीजें होती है, अगरबत्ती होती है, सब बाकी पैराफर्निलिया होता है, बुक्स भी होते, तो अगरबत्ती के कार्टन्स के बीच में वो ईशोपनिषद था, तो ईशोपनिषद जो इनको मिली उसके अंदर वो अगरबत्ती की सुगंध, बोला कि पुस्तक इतनी सुगंधित हो सकती है, तो उनका अट्रैक्शन वो अगरबत्ती की सुगंध से हुआ जो कि ईशोपनिषद से उनको आ रही। कुछ साल पहले मैं इटली गया था, तो इटली में एक शहर है बोलोनिया, वहां पर एक बहुत ही सुंदर तरीके से प्रचार करते हैं श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य त्रय प्रभु और उनकी वाइफ, और मुझे इतना उत्साह हुआ उनको देखकर कि वो दोनों सुबह अपने घर से सब कुछ वो प्रचार का सामान अपनी गाड़ी में डालकर एक भाड़े का उन्होंने जो सेंटर बनाया भाड़े पर लेकर एक जगह बोलोनिया में, तो ड्राइव कर कर वहां पर आते हैं और वहां पर जो ये माताजी हैं इनका नाम है कृष्ण लोका माताजी। ये कृष्ण लोका माताजी ये इटालियन है और त्रय प्रभु अमेरिकन है। और ये कृष्ण लोका माताजी ये बता रही थी कि ये इटली छोड़कर ये भगवान की खोज करते 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 इंडिया पहुंची। ये इस्कॉन में आने से बहुत साल पहले की बात है। तो जब इंडिया पहुंची तो इंडिया में पता नहीं कहां जाना है, तो इंडिया में जब ये पहुंचे तो बॉम्बे में इन्होंने गाइड को पूछा कि मुझे कहां जाना चाहिए, मुझे कुछ जानना है इंडिया की संस्कृति के विषय में। तो गाइड को क्या पता है संस्कृति क्या होती है, अब ये अंग्रेज लोग क्या संस्कृति जाने। तो गाइड ने गोवा भेज दिया कि जाओ, सारे वेस्टर्नर्स गोवा जाते हैं। तो ये कृष्ण लोका माता जी गोवा पहुंच गए, इनको क्या पता। अब गोवा में देखिए कि वही जो इटली में सारे नशेड़ी बैठे हैं, इधर भी वही बैठे हैं, गोवा में सब वैसे ही लोग। तो कहा नहीं नहीं ये यहां पर कौन सा अध्यात्म मिल रहा है। तो फिर वो वहां से पूछते 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 कर्नाटक पहुंची और कर्नाटक में एक मध्व संप्रदाय के किसी मठ का कोई एक आश्रम था, तो वहां रहने लगी और वहां पर धीरे धीरे उनको जो सही ज्ञान है मध्व संप्रदाय सही ज्ञान उनको मिला। और वो इतने साल वहां पर रही, एक ऐसा आश्रम जंगल में था, वो जंगल में रही कि कुछ पता नहीं कि क्या इनका खाना पीना है, रहन सहन, इटली से आई इडली खा रही थी वहां केवल कर्नाटक में, और कन्नड़ा सीख लिया, कन्नड़ा फ्लुएंटली बोलना सीख लिया। और फिर उनके एक मित्र जो कि इटली से आए उनको खोजते हुए उनके परिवार के, तो वो उनके लिए ईशोपनिषद बुक लेकर आए कहीं से, उनको इटली में ईशोपनिषद, तो ईशोपनिषद बुक उनके लिए लेकर आए। और जब उन्होंने ईशोपनिषद पढ़ा इंग्लिश में और उनको समझ में आया कि वो सेंटर्स लिस्ट है, कि इतने सारे इनके सेंटर भी हैं, फिर वो इस्कॉन के संपर्क में आई। तो ये उनकी स्टोरी। तो ये श्री राधा मदन गोपाल जी की, तो ये वहां पर इटली में ये कुकिंग क्लासेस के द्वारा प्रीचिंग करती, और इनका बहुत विशेष कुकिंग क्लासेस, क्योंकि इटली के जो लोग हैं उनको आकर्षित करना डायरेक्टली फिलॉसफी से बहुत मुश्किल है, तो इसलिए ये कुकिंग क्लासेस वहां पर लेती हैं। तो लोकल इटालियंस कुकिंग, वेजिटेरियन कुकिंग सीखने आते हैं और ऐसे ऐसे आइटम्स ये सिखाती हैं कि उन्होंने मेरे को भी दिखाया, लेकिन वो सुन के देख के मुझे लगा कि नहीं नहीं ये है महाप्रसाद, लेकिन उसका नाम था वेजिटेरियन बीफ, क्योंकि वहां के जो लोग हैं उनको सब उस प्रकार का सुनना दिखना चाहिए, है सब कुछ वेजिटेरियन लेकिन वो दिखता उस प्रकार से। मैंने कहा नहीं नहीं दाल चावल दे दो ठीक है। तो वहां के लोग इस प्रकार से बहुत ज्यादा यूरोपियन अमेरिकन से ज्यादा इंद्रिय भोग में डूबे हुए बताए गए। और त्रय प्रभु वो वहां पर योगा क्लासेस और ये सब लेके, वो लोग दोनों जो दंपति हैं अपना पूरा फुल टाइम केवल प्रीचिंग में डाले हुए, और प्रीचिंग के लिए उन्होंने अपना परिवार बढ़ाया नहीं, कोई बच्चे नहीं पैदा किए, कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि प्रीचिंग में बाधा आएगी इसलिए। तो वो पूरा संभाल रहे हैं वहां का सेंटर बोलोनिया का। तो वहां पर जब मैं था तो एक व्यक्ति वहां पर आया, उसका नाम था अंटोनियो, वहां पर सब इस प्रकार के नाम, पेद्रो, एंटोनियो, शहर के नाम भी ऐसे, बोलोनिया, विनिसिया, फ्लोरेंस इत्यादि। तो वो वहां पर आया तो वो अपनी कहानी सुना रहा था। बोलता था कि मैं आपके हरे कृष्णा वालों से नफरत करता था। क्यों नफरत करता था? क्योंकि जहां पर भी मैं जाऊं आपकी ये किताब लेकर, ये जैसा भी अपना मैराथन चल रहा है ना, किताब लेकर कि ये किताब पढ़ो, ये आपके लिए अच्छा है, आपके जीवन के उद्धार के लिए, इतना मैं परेशान हो गया। तो एक बार आपके हरे कृष्ण का एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर वो किताब मेरे मुंह के सामने ऐसे कर रहा था, तो मैंने वो किताब ली और मैं भाग गया बिना पैसे दिए। बिना पैसे दिए भाग रहा है वो, बुक डिस्ट्रीब्यूटर भी पीछे पीछे भाग रहा है ये बिना पैसे दिए। अभी इसको मैं सबक सिखाऊंगा, अगली बार अगर ये मेरे सामने बुक करेगा तो ऐसे भाग जाऊंगा मैं, बुक लेके भाग गया और अपने कमरे में गया, अपने घर में कमरे में गया, फेंक दिया उसने बुक, ऐसे फेंक दिया। और फिर बैठा हुआ था अपने कमरे में, और वो रोज वहां पर बोलोनिया में एक ड्रग मार्केट है, मतलब दवाइयां नहीं, ये सब ब्राउन शुगर, कोकेन, वो ड्रग मार्केट में जाता था रोज ड्रग्स लेने के लिए। तो ड्रग मार्केट के लिए निकल रहा था कि उसको फोन आया कि उसके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, नहीं, पिताजी को हार्ट अटैक आया और पिताजी हॉस्पिटल में, आईसीयू में। तो भागा और फिर उसकी मदर ने फोन किया कि मुझे भी रास्ते में पिकअप करके चलो। तो अपनी मदर को पिकअप करने गया, तो मदर उसकी है माँ, वो भागते हुए बाहर आ रही थी तो वो लड़खड़ा कर गिर गई। तो जब वो लड़खड़ा कर गिरी तो उसका दांत उसके होठों में अंदर चला गया, तो वो अभी पीड़ित। अब वहां पिताजी ऐसे हालत में, इनकी माताजी ऐसी हालत में, और उसको उसके सेलफोन पे रिंग आती है, उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आता है और उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि मैं दूसरे के साथ जा रही हूं। तो ये सब हालत में वो जाता है और उसके बाइक का एक्सीडेंट होता है, उसका पैर तोड़ जाता है। तो एक दिन में उसके पिताजी, उसकी माताजी, उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के जाती है, उसको खुद को फ्रैक्चर। तो ऐसे हालत में वो रात को पूरा परेशान, और फिर वो अपनी परेशानी और स्ट्रेस दूर करने के लिए ड्रग मार्केट में जाता है कोई ड्रग्स लेने के लिए। तो वहां पूरे मार्केट में उसको कहीं ड्रग्स नहीं मिलता, कहीं ड्रग्स नहीं मिलता उसको पूरे मार्केट में। और हताश होकर जब वो वापस अपने कमरे में आता है तो उसकी नजर पड़ती है उस किताब के ऊपर। तो किताब उठाता है और किताब के बैक कवर पर श्रील प्रभुपाद, और कौन सी किताब थी? ईशोपनिषद। तो प्रभुपाद को जब उसने देखा कि वो इतना पूरे दिन भर परेशान, और प्रभुपाद को जब देखा तो प्रभुपाद मुस्कुराते हुए और ऐसा शांत चेहरा प्रभुपाद का, तो उसे लगा कि ये व्यक्ति इतना शांत कैसे रह सकता है। और फिर उसने ईशोपनिषद पढ़ी, और ईशोपनिषद जब उसने पढ़ी तो इतना वो आकृष्ट हुआ कि वो अब वहां पर सोलामाला करता है, बोलोनिया के सेंटर में मंदिर में आता है, और उसने सब कुछ छोड़ दिया। बाकी सब तो अपने आप छूट रहे थे, और उसने भी जो कुछ वो ड्रग्स वगैरह लेता था सब कुछ उसने छोड़ दिया। तो यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे भगवान किसी न किसी प्रकार से आकृष्ट करेंगे अपने प्रचारक को भेजकर, जैसे श्रील प्रभुपाद या प्रभुपाद की पुस्तकें या उनके प्रतिनिधि इत्यादि। जैसे मॉस्को में, मुझे याद है, अब मॉस्को में वहां पर मैंने देखा वो लोग जब तुलसी आरती करते, जैसे हम लोग तुलसी आरती करते, पहले अगरबत्ती ऑफर करते हैं, फिर अगरबत्ती को स्टैंड में रख देते हैं, तो वहां पर एक आदमी हर समय असिस्टेंट खड़ा रहता है, वो जैसे ही अगरबत्ती ऑफर हुआ तुलसी महारानी को, वो उसको बुझा देता है, आगे जलने नहीं देता है। तो मुझे अजीब लगा कि ये इतनी कमी है अगरबत्ती की शायद यहाँ पे, और वापस कैसे आप ऑफर कर सकते हैं एक बार ऑफर्ड अगरबत्ती। तो रोज मैंने देखा वो लोग अगरबत्ती बुझा देते थे। तो मैंने पूछा, ये आप अगरबत्ती को बुझा क्यों देते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम लोग जब भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गाड़ी में निकलते हैं तो ट्रैफिक पुलिसमैन जो मॉस्को के हैं उनको सबसे ज्यादा हमारी अगरबत्ती अच्छी लगती है, उनको प्रसाद से भी ज्यादा इस्कॉन की अगरबत्ती अच्छी लगती। तो ट्रैफिक पुलिसमैन कुछ भी, अगर हमारा सिग्नल टूट गया या जो भी कुछ हुआ या हमको परमिशन चाहिए कहीं पर, तो हम उनको अगरबत्ती देते। तो हमने सोचा कि हम उनको क्यों ना महाअगरबत्ती दें। तो मुझे थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा था कि ये प्रसाद से ज्यादा अगरबत्ती से पुलिसमैन आकृष्ट है। तो मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, वो मेरे को हरिनाम के लिए ले जा रहे थे, मैंने कहा कि ठीक है देखते हैं। तो ट्रैफिक पुलिसमैन खड़ा था, तो मैंने कहा इसको गाड़ी रुका के अगरबत्ती दो देखते हैं। तो डिवोटी ने पुलिसमैन के सामने गाड़ी रोकी और हरे कृष्णा बोला उसने, वो पहचानता था, उसने हरे कृष्णा बोला और ये अगरबत्ती निकाल के, एक अगरबत्ती निकाल के वो पुलिसमैन को दिया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये पुलिसमैन मेरे आंखों के सामने उसने अगरबत्ती एकदम मुस्कुराते हुए, जैसे कि उसको किसी ने गुलाब जामुन या रसगुल्ला या ऐसे कुछ मिठाई दे दी, ऐसे अगरबत्ती लेके उसने लाइटर निकाला, जलाई अगरबत्ती, सूंघ रहा है, वो सुट्टा मारते हैं जैसे, ऐसे अगरबत्ती सूंघ रहा है। तो हम लोगों को कोई कल्पना नहीं है कि भगवान पूरे देश विदेश में किस प्रकार से आकृष्ट कर रहे हैं लोगों को। अब यहां पर जब हम एक प्रचारक की जो भूमिका है जैसे ये लोग निभा रहे हैं ग्वाल सखा, तो इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये कि जो हमारा रोल है एज अ प्रचारक और एक है हमारा गोल, रोल वर्सेस गोल। अब इसमें होता क्या है कि कई बार हम प्रचार का जो गोल है उसको भूल जाते हैं और रोल के ऊपर फोकस करते हैं। सही बात है, हमारे रोल के ऊपर हमको फोकस करना चाहिए, लेकिन अगर रोल के ऊपर फोकस करते करते अगर हम गोल भूल गए प्रचार का, तो वो गलत है। जैसे कि मान लीजिए कई बार हम लोग फीस्ट में जानकीनाथ प्रभु बनाते हैं मिक्स्ड वेजिटेबल। आप जानते हैं कि कई बार इस्कॉन के फीस्ट में मिक्स वेजिटेबल क्यों बनता है? मैं थोड़ी अंदर की बात बताता हूं। ये हम लोग जब राधा गोपीनाथ में भी फीस्ट वगैरह सब प्रेरणा के लिए बनाते थे, तो उसमें सब्जियों में ये मिक्स वेजिटेबल जो सब्जी बनती थी, तो इसके पीछे एक कारण ये था कि इतनी सारी सब्जियां उसके अंदर है, कोई ना कोई किसी ना किसी सब्जी से तो आकृष्ट होकर लेगा वो सब्जी। अगर आप एक प्रकार की सब्जी बनाते हो, मान लो आपने पालक की बनाई सब्जी, तो कई लोग होंगे उनको अच्छी लगती है पालक, कई लोगों के क्या है बकरी की तरह घास फूस खिला रहे हैं। लेकिन हमने देखा मिक्स वेजिटेबल, उसके अंदर आपने फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, बीन्स, मटर, टमाटर, इतनी सारी जो सब्जियां डाली हैं, तो कोई ना कोई किसी ना वो देखे, अरे मेरी फेवरेट एक तो है उसके अंदर, लो 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 लो। तो हम लोग सब जो इस्कॉन में क्या है, मिक्स वेजिटेबल है, कोई फूल गोभी है, कोई पत्ता गोभी है, कोई गाजर है, कोई बीन्स है, कोई मटर है, कोई जीरा है, कोई राई है, कोई हींग है, दिखता ही नहीं है। तो कोई पनीर है, मिक्स वेजिटेबल में पनीर भी डालते हैं ना कई बार। तो ये इसलिए है क्यों इस्कॉन में प्रभुपाद ने इस प्रकार से बनाया, और अपनी फिलॉसफी भी ऐसी है। भागवत, चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता, सब प्रकार ये भगवान की लीलाएं हैं। स्ट्रांग फिलॉसफी, एग्जाम्पल है, स्टोरी है, सब कुछ है। तो ये मिक्स वेजिटेबल की तरह है, तो कोई किसी से आकृष्ट होता है। और आप देखो कई बार जो सर्विंग करने वाले होते हैं, अगर वो मिक्स वेजिटेबल सर्व कर रहे हैं तो जितने लोग लाइन में खड़े हैं वो लोग अलग अलग प्रेफरेंस देते हैं, बोलते थोड़ा वो पनीर के दो तीन पीस और डालना। एक बार राधा गोपीनाथ मंदिर में उन्होंने पोहा बनाया था, तो मैं वो पोहा के साथ कोकम शरबत बांट रहा था और दूसरे भक्त पोहा बांट रहे थे। तो एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि मेरे को थोड़ा बटाटा निकाल के दो ना। अब ये जो सर्विंग कर रहा था इनको समझ में नहीं आया, तो इन्होंने सारे बटाटे अलग कर दिए और खाली पोहा दिया। तब मैंने सोचा कि कौन इसमें गलत था, उनका पूछने का तरीका गलत था या इनके समझने का तरीका गलत था। तो कई बार ऐसे होते हैं जो वो लोग, उनके प्रेफरेंस होते हैं थोड़ा वो गोभी और निकाल के दो, थोड़ा ये और निकाल के दो, तो उनका उनके प्रति आकर्षण होता है। जैसे मुझे, जब मैं एयरफोर्स में था तो मुझे एक मेरा फ्रेंड, उसको पता लगा लास्ट में, जब मैं, अब लास्ट तक किसी को पता नहीं था कि मैं क्या करने वाला हूँ छोड़ने के बाद, तो उसको पता लगा कि मैं ऐसे ब्रह्मचारी बनने वाला हूँ। एक 3 दिन पहले, मेरे डिस्चार्ज के 3 दिन पहले, तो वो मेरे को पूछ रहा था कि क्या इतना तुमको आकर्षण लगा इसके अंदर, मतलब उसको पता लगा कि क्या जीवन होने वाला है अभी मेरा। तो वो बेचारा चिंता कर रहा था, मतलब वो मुझे बेचारा मान रहा था कि ये सब कुछ यहाँ के ऐशो आराम को छोड़ के ऐसा जीवन जीने वाला है। तो उसने पूछा क्या कि कितने कितने साल तक ट्रेनिंग रहता, मतलब कितने साल तक ये चलेगा ऐसा, क्योंकि एयरफोर्स में ट्रेनिंग बहुत टफ रहता, उसके बाद में फिर सब ऐशो आराम बाद में मिलते हैं। तो उसको लगा कि शायद कुछ ट्रेनिंग होगा मेरा उसके बाद में फिर। मैंने कहा नहीं, अभी तो पूरे जीवन काल तक ऐसा जीवन जिया, क्या इसमें इतना तुमको आकर्षण मिला। तो हाल ही में मैं अभी बम्बई गया था, तो एक प्रोग्राम मैंने किया, तो मेरे को ये ध्यान में आ रहा था, मैंने उसको बताया कि मैं किसके प्रति आकृष्ट हुआ, तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि फिलॉसफी से कोई आकर्षित होता है, फिर डीटी इसमें क्या, मूर्तियों से क्या इतना आकर्षण कि जीवन अपना ऐसे दे देना। हम भी जाते हैं मूर्तियों को देख के वापस आ जाते हैं घंटी बजा के पेड़ा लेके, ऐसा क्या इतना। तो हाल ही में मैं बम्बई में, अभी जब मैं जयपुर गया था तो मैंने एक प्रोग्राम किया, तो प्रोग्राम के बाद वो फैमिली बता रहे थे कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल। तो उनकी एक लड़की, वो 12th स्टैंडर्ड में, तो उनके पिताजी ने कहा कि आप थोड़ा समझाइए कि ये कुछ अजीबोगरीब फील्ड में जाने का सोच रही है, फॉरेंसिक साइंस होता है जब कहीं पर खून हुआ है तो खून कैसे हुआ है कुछ उसके सुराग ढूंढने के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेजते हैं डेड बॉडी को। तो वो लोग देखते हैं कि अरे कुछ निशान कहीं पे कुछ रह गया, खूनी ने कुछ छोड़ दिया, कितने बजे खून हुआ, ये सब कुछ, इसको बोलते हैं फॉरेंसिक साइंस। तो पिताजी चिंता कर रहे थे कि मेरी बेटी ये सब करना चाहती है। तो मैंने पूछा कि क्या आपको इसमें इतना अट्रैक्टिव लगा, तो उसने कहा, अब वो सोचिए 12th स्टैंडर्ड की एक लड़की है, वो कहती है आई एम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स डेड बॉडीज। तो पिताजी बोले देखो ये ये इनका अट्रैक्शन है, इतना इसको पाल पोस के बड़ा किया, इसका अट्रैक्शन है डेड बॉडीज के प्रति अट्रैक्शन। तो वही मैं सोच रहा था कि कई बार लोग हमको पूछते हैं कि व्हाट वर यू अट्रैक्टेड टू। दुनिया में आजकल देखो अट्रैक्टेड टू डेड बॉडीज, तो क्या भविष्य रहेगा फिर? तो कलयुग में हम कभी ये एस्टिमेट नहीं लगा सकते कि कृष्ण भक्ति से कब कहां पर कोई कैसे आकृष्ट होगा। इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया मिक्स वेजिटेबल का, कि हम लोग सब वो मिक्स वेजिटेबल की तरह है, और कोई किसी एक वेजिटेबल से आकृष्ट होगा उस प्रकार से। अब ये होता है कि जब हम रोल और गोल ये दोनों की चर्चा कर रहे हैं कि प्रीचिंग में एक है हमारा रोल एज अ प्रीचर और फिर है गोल ऑफ अ प्रीचर। तो हाल ही में हमारे आनंद मुकुंद प्रभु मुझे एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमारे श्रील प्रभुपाद के कितने वरिष्ठ भक्त वो शुरुआत के दिनों में इतने सरेंडर्ड थे, लेकिन आज उनका सरेंडर इतना नहीं दिखता है। वो इस्कॉन में लेकिन सरेंडर इतना नहीं दिख रहा, इतना एक्टिव नहीं हो जितना जब प्रभुपाद इस्कॉन शुरू किए थे 1966 में। तो मैं एक उदाहरण दे रहा था इनको कि ये जो हमारा इस्कॉन मूवमेंट है ना, ये क्रिकेट मैच की तरह है। क्रिकेट मैच में क्या होता है कि कुछ बैट्समैन अपना बैटिंग कर कर पेविलियन में बैठ जाते हैं। फिर तो ये जो प्रभुपाद के वरिष्ठ भक्त, ये लोग ने 1966-70 में उनकी बैटिंग चल रही थी, तो उन्होंने अपनी बैटिंग की, बैटिंग उन्होंने सेंचुरी, कईयों लोगों ने डबल सेंचुरी मारी है, और सब उनकी बैटिंग पूरी होने के बाद अब वो पेविलियन में बैठे हैं। क्यों? ताकि हम लोग बैटिंग कर सके। तो ये टीम है, टीम वर्क है ये। तो वो लोग पेविलियन में बैठे मतलब ये नहीं कि टीम में नहीं है, और वो लोग पेविलियन में बैठे इसका मतलब ये नहीं कि मैच खत्म हो गया या मैच हार गए। नहीं, बैटिंग चल रही है, उनकी बैटिंग पूरी हो गई, अभी हमारी बैटिंग चल रही है। और जब टीम जीतती है तो पूरी टीम जीतती है, वो है गोल ऑफ प्रीचिंग। तो हमको ये नहीं समझना चाहिए कि अरे ये एक्टिव प्रीचर है, अभी वो एक्टिव प्रीचर नहीं है। हो सकता था कि जब प्रभुपाद को जरूरत थी उनकी बैटिंग की, तब वो बैटिंग किए, और इसलिए प्रभुपाद हर समय बोलते थे व्हेन आई रिक्वायर्ड द मोस्ट These were the Americans and Europeans who came forward and helped me। और कई बार क्रिकेट मैच में आप देखो ऐसी स्थिति आती है ना, चार बॉल दो रन, 8 विकेट चले गए, और लास्ट में कौन भेजे जाते हैं? जो लेग स्पिनर, ये वो जो बैट्समैन नहीं है, कौन थे अपने, सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू बॉलर थे ना वो, शायद उनको भेजे जाते, लास्ट में उनको भेज देते थे। तो अब क्या है कि वो लास्ट में 2 रन, पूरा जो टीम है उसके ऊपर फोकस कर रहे, भाई 2 रन निकाल देना, तो आउट मत होना। कैसे तो इधर उधर कहीं से तो टच करके 2 रन निकाल दे। तो सब लोग अब उसका गुणगान कर रहे हैं। वो जैसे ही निकलता है पेविलियन से, कभी उसको कोई पूछता भी नहीं होगा, लेकिन अब इस स्थिति में जब केवल 4 बॉल बाकी और 2 रन लेने, तो पूरा स्टेडियम, पूरी टीम, सारे जो कोच हैं वो सब उसको अच्छी से खिला पिला के कि देख ध्यान से आंखें खोल कर, हम तुम्हारे साथ हैं, सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी अब तुम ही हो। तो प्रीचिंग में भी कई बार क्या होता है कि कई बार ऐसी स्थिति आती है प्रीचिंग में कि बड़े बड़े बैट्समैन अवेलेबल नहीं होते, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति अवेलेबल रहता है और खाली 2 रन निकालना है बस, और उस पर निर्भर करता है कि टीम जीतेगी या हारेगी। तो मैं ये बोल रहा हूं कि खाली व्यासासन के ऊपर बैठकर जो लेक्चर दे रहा है वही प्रीचर नहीं है। मान लो कि वो जो लास्ट के दो रन उसमें क्लीन बोल्ड हो गया, वो पहले तो हार गई पूरी टीम। तो होता क्या है कि मान लो प्रचारक ने बहुत 3 घंटे का ऐसा सेमिनार दिया, प्रोग्राम हो गया, और फिर कोई बाहर गया शू स्टॉल पर अपना चप्पल लेने के लिए, तो जो लास्ट बैट्समैन है वो क्या है, शू स्टॉल पर चप्पल देने वाला हो सकता है, कि जो इतना सब कुछ सेंचुरी मारा पूरे टीम ने, वो शू स्टॉल पर पूरे टीम को हरा सकता है प्रीचिंग में, कि उसने अगर शू स्टॉल पर गलत व्यवहार कर दिया उसके साथ, तो हुआ क्या कि वो व्यक्ति बोलेगा जिंदगी में मैं कभी नहीं आऊंगा इस मंदिर में। उसने जितना 3 घंटे का लेक्चर सुना, जितने पनीर की सब्जी खाई, जितना बटर हलवा सब कुछ उसने खाया, वो एक शू स्टॉल या जो भी कुछ छोटी सी बात के वजह से वो पूरा मैच हार कर जाता है, या हम लोग हारते, वो नहीं हार, हम लोग हार जाते। तो ये मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि हर एक प्लेयर उस टीम का कितना इंपॉर्टेंट है, कि कई होंगे सेंचुरी मारकर पवेलियन में बैठे वो भी इंपॉर्टेंट थे, कई हाफ सेंचुरी मारे वो भी इंपॉर्टेंट, लास्ट का एक रन जो निकाल रहा है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने की बाकी सारे। तो इसलिए इधर क्या समझ में आ रहा है, इन प्रीचिंग इट इज अवर गोल नॉट जस्ट अवर रोल। जैसे मैं अभी हमारे प्रोग्राम में ये उदाहरण दे रहा था, राधानाथ महाराज ने उदाहरण दिया अपने एक प्रवचन में, कि हम लोग गार्लैंड की तरह, हम लोग सब श्रील प्रभुपाद के गार्लैंड की तरह, और गार्लैंड में क्या होता है, महाराज बहुत इसको एनालाइज करके बता रहे थे कि गार्लैंड में आप देखो कई फूल होते हैं जो सिंपल होते हैं, कई फूल होते हैं जैसे गुलाब के होते हैं अलग अलग कलर के। तो महाराज कह रहे थे कि वैसे ही कांग्रीगेशन में कई डिवोटीज होंगे एकदम सिंपल होंगे, कई डिवोटीज होंगे बहुत करिज्मेटिक होंगे, करिज्मेटिक मतलब बहुत कलाकार होंगे वो, तो कई होंगे वो गुलाब के फूल की तरह। तो महाराज बता रहे थे कि अगर आप दो गार्लैंड देखो, एक गार्लैंड पूरे गुलाब का बना हुआ और एक गार्लैंड है जिसमें शेवंती सिंपल फूल है और बीच बीच में गुलाब है, तो शेवंती के वजह से गुलाब की जो सुंदरता है और ऊपर उठकर आती है। तो महाराज बोल रहे थे कि इसमें क्रेडिट गुलाब की सुंदरता को जो मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है, अगल बगल में जो सिंपल फूल है उसकी वजह से। अगर पूरा गार्लैंड गुलाब का है तो ज्यादा इतना फोकस नहीं करते, सब गुलाब ही तो है उसमें। तो महाराज बोले बिकॉज ऑफ सम सिंपल डिवोटीज, द करिज्मेटिक डिवोटीज, देयर क्वालिटीज आर एनहांस्ड, सो दे शुड गिव क्रेडिट टू द शेवंती। और फिर महाराज ने इसको और एनालाइज किया, सो व्हाट अल्टीमेटली द गार्लैंड इज डूइंग, प्रेजेंटिंग इटसेल्फ अराउंड द नेक ऑफ कृष्णा, एंड समटाइम्स सम डिवोटीज विल बी लाइक द थ्रेड, दिखेंगे ही नहीं लेकिन उनके वजह से सारे फूल टिके हुए हैं। महाराज बोले कई भक्त ऐसे होंगे जो दिखेंगे नहीं उस गार्लैंड में, लेकिन उनके वजह से वो गुलाब भी टिका हुआ है, उनके वजह से वो शेवंती भी टिकी हुई, सब कुछ उनके वजह से। और फिर महाराज ने बोला कि कई डिवोटीज होंगे वो नीडल की तरह होंगे, कई नीडल की तरह होंगे कि चुभेंगे लेकिन वो जो टोच रहे हैं, टोच ना बोलते ना, वो जो टोच रहे हैं उसके वजह से वो धागा जा रहा है और उसके वजह से सब एक साथ हैं। तो महाराज बता रहे थे कि सबका अपना अपना रोल है, फाइनली गोल क्या है, ये उसका धागे का, वो सुई का, और वो शेवंती का, और वो गुलाब का, सबका रोल क्या है कि मदन गोपाल जी को सुसज्जित करना, दैट इज द गोल ऑफ प्रीचिंग, उनको सुसज्जित करना। मैं जस्ट एक लास्ट स्टोरी से कंक्लूड करूंगा आज का लेक्चर। एकदम फ्रेश जयपुर में अभी मैं 2 दिन पहले था। तो हुआ क्या कि वहां पर हमारे गौड़िया वैष्णव, इस्कॉन के डायरेक्टली नहीं है लेकिन गौड़िया वैष्णव संप्रदाय को फॉलो करते हैं पूरा, हरे कृष्ण महामंत्र 16 माला ये सब करते हैं वो लोग। तो मैं इन भक्तों के घर में रुका हुआ था, बहुत सुंदर उनके घर में राधा वृंदावन चंद्र के डीटीज। तो उन्होंने पूछा कि आप लेक्चर देंगे क्या, हमारा एक सत्संग होता है रोज सुबह, तो आप लेक्चर देंगे क्या। तो आपने जो वहां पर मूर्ति वाले उनकी जो दुकान खुलती थी 10 बजे और इनका लेक्चर सुबह 9 से 10। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने देखा वो इतना बड़ा सत्संग आ गया, मेरे को लगा कुछ 2-4 लोग सुबह आएंगे। सुबह 8:30 बजे पूरा उनका जो लिविंग रूम भरा हुआ सब वहां के लोकल लोगों से। तो मैं लेक्चर दे रहा था और मैंने लेक्चर में एक उदाहरण दिया कि कैसे हम मछली की तरह हैं। मछली जब जल में रहती है, प्रभुपाद का उदाहरण है, तो वो अपने स्वाभाविक स्थिति में रहती है, और जल के बाहर कैसे मछली तड़पती है। तो मैं मछली का उदाहरण दे रहा हूं। मैंने देखा एक व्यक्ति पीछे बैठा वो रो रहा है। तो मुझे लगा कि ऐसा कोई मार्मिक उदाहरण तो मैंने दिया नहीं, मछली का दिया है, तो ये रो क्यों रहा है, ऐसे टप 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 आंखें से आंसू गिर रहे हैं आंखों से। तो फिर वो लेक्चर हुआ, पूरा सब कुछ हो गया, कीर्तन हुआ, और उसके पश्चात सब चले गए और ये व्यक्ति उनकी धर्मपत्नी के साथ रुके हुए, बोले कि मुझे मिलना इनसे। तो आए तो मैं ध्यान से देख रहा था कि वो लेक्चर के समय रो रहे थे। तो बोले कि मैं बंगाल से हूं, मेरा नाम सुकांत दत्ता, सुकांतो ऐसे बोला, सुकांतो। तो मैंने कहा हाँ बोलिए। तो उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई। वो बोले कि वो बंगाल से जयपुर आए, ये जो ज्वेलरी का काम करते हैं ना, बहुत से बंगाली बंबई में भी ज्वेलरी का काम करने के लिए जाते हैं, तो जयपुर वहां पे ज्वेलरी का काम करने के लिए किसी ज्वेलर की दुकान में। तो अब ये बंगाली, तो ये इनकी नई नई शादी हुई, तो ये गए मछली खरीदने के लिए। क्यों, इनको मछली के उदाहरण से आंखों में आंसू आ रहे थे, अब ये बता रहे थे कि मछली खरीदने गए दुकान में, जो भी मछली मार्केट वहां का। तो उन्होंने देखा कि पहली दफा, वो बोल रहे थे कि पहली दफा मैंने अपने जीवन में ये दृश्य देखा कि वो मछली जिंदा थी मछली मार्केट में, वो ऐसा हिल रही थी, उन्होंने जो मछली ली वो ऐसा हिल रही थी मछली। तो उनके मन में इतना वो गिल्टी ग्लानी उनके मन में हुई कि अरे ये जीव है। वो बोले कि अब तक मेरे को बंगाल में कई पंडितों ने बोला कि बंगाल में मछली खा सकते हो आप, बाकी नहीं खाना, कुछ मांस नहीं खाना, मछली खा सकते। तो उनको किसी ने बताया नहीं था कि ये जीवित जीव है इस प्रकार से। उन्होंने जब देखा तो उनको मन में ग्लानी हो रही थी, लेकिन फिर भी वो बोले कि क्या कर सकते हैं अभी। तो उन्होंने अपनी पत्नी को दिया बनाने के लिए, उनकी पत्नी ने बनाया, और जब उन्होंने उसको खाया तो उसकी जो हड्डी होती वो अटक गई, और उसके वजह से उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो डॉक्टर के पास जब वो गए तो वहां पर बाहर बैठे थे, क्लिनिक में वेट कर रहे थे अंदर जाने के लिए, तो देखा वहां पर राधा गोविंद जी की फोटो। तो राधा गोविंद जी की फोटो को ध्यान से देख रहे हो, और फिर जो भी डॉक्टर से दवाई वगैरह ली उन्होंने, और उस रात को जब वो सोए तो उनके सपने में राधा गोविंद जी आए, और सपने में राधा गोविंद जी मत्स्य अवतार के रूप में आए। तो ये एकदम पूरा पसीना पसीना होकर बाहर उठे वो, और फिर सुबह 4 बजे उठ गए और राधा गोविंद जी की 5 बजे की मंगल आरती में पहुंच गए, और वहां पर बैठकर वो राधा गोविंद जी से एक ही चीज पूछ रहे हैं कि आप कुछ मुझे संकेत करना चाहते हैं तो मुझे साफ साफ बताइए कि मैं सही कर रहा हूं अपने जीवन में कि गलत कर रहा हूं। ऐसे उन्होंने राधा गोविंद जी से पूछा और प्रार्थना की। और जैसे ही वो फिर मंगल आरती के बाद दर्शन लेकर बाहर निकल रहे थे तो राधा गोविंद जी के मंदिर के बाहर गौर निताय का एक मंदिर है गली में, तो उन्होंने देखा वहां पर कीर्तन चल रहा है, तो गए अंदर, तो उधर सत्संग चल रहा था, तो बैठे सत्संग में और अपने गौड़िया वैष्णव यही प्रचार कर रहे थे वहां पर। तो प्रवक्ता वहां पर उन्होंने एक उदाहरण दिया और उन्होंने उदाहरण दिया कि एक बार एक मधुमक्खी और एक मक्खी की दोस्ती होती है। तो मक्खी हर समय कूड़ा करकट में जाती, मधुमक्खी हर समय फूलों के ऊपर वहां से शहद लेती, दोनों की दोस्ती हुई। तो एक बार मधुमक्खी ने मक्खी को कहा कि आओ मैं तुमको मेरी बागीचे की सैर कराता। तो मधुमक्खी मक्खी को, ये स्टोरी पूरी मेरे को सुना रहे, तो मधुमक्खी मक्खी को सैर करा रही है अपने बगीचे की। तो मक्खी मधुमक्खी को इमिटेट करते हुए एक फूल के ऊपर बैठता है, बैठती है ना मक्खी, तो एक फूल के ऊपर बैठती है मक्खी। और उसी समय माली वो फूल तोड़ता है और वो मक्खी फूल के अंदर छिप जाती है, वो फूल के पंखुड़ी के अंदर छिप जाती है। और फिर वो फूल पहुंचता है राधा गोविंद जी के चरणों पर। तो ये उदाहरण दे रहे थे कि हम सब मक्खी के समान हैं, कूड़े करकेट के अंदर सब ढूंढ रहे हैं आनंद, लेकिन जब हम साधु संघ में आते हैं तो वो मधुमक्खी के संघ के समान है, और जब उनके संघ में आते हैं तो ये न कहीं न प्रकार हम भगवान श्री राधा गोविंद के चरणों में पहुंचते हैं। तो जब उन्होंने ये उदाहरण सुना तो उनको लगा कि मैं भी ये मक्खी के समान ही जीवन जी रहा था और भगवान ने मुझे कैसे तो पकड़कर अपने चरणों में संकेत दिया आने के लिए। और फिर इन्होंने जब वो लेक्चर में मैंने वो मछली का उदाहरण दिया तो उन्होंने ये सब कनेक्शन लिया है कि वो जो मछली उन्होंने देखी है तड़पती हुई, फिर उनका कांटा अटक गया उनके गले में, डॉक्टर के पास गए, राधा गोविंद जी, सपने में मत्स्य अवतार, और फिर बाहर निकलते ही सत्संग। तो मैंने कहा तो फिर अब आप क्या कर रहे हो आजकल? तो उन्होंने माला निकाली, मैं 16 माला कर रहा हूँ। उस समय से वो 16 माला शुरू किए, सब कुछ छोड़ दिया, अपनी पत्नी को कहा। हाँ, वो ये बताए कि जब वो सत्संग में बैठे थे उनकी पत्नी का फोन आ रहा था और पत्नी, इन्होंने जब वापस फोन किया तो पत्नी ने फोन पे क्या कहा, आते समय मछली लेकर आना। तो ये वहां से मछली तो छोड़ वो पत्नी के लिए बीड बैग लेकर गए। तो पत्नी एकदम, ये क्या लेके आए? तो फिर उन्होंने पूरी स्टोरी अपनी पत्नी को सुनाई और अब उनकी पत्नी, मैंने देखा दोनों माला झोली लेके भगवान का नाम जप कर रहे हैं। तो ये मैं बोलना चाहता हूं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि भगवान किसको प्रचारक बना सकते हैं। हम लोग सोचते हैं कि खाली जो श्लोक जानता है, जो बोलना जानता है, यहां पर एक मरती हुई मछली मार्केट में एक मरती हुई मछली ने ये जो सुकांतो दत्त इसके जीवन में ऐसा परिवर्तन लाया। तो यहां पर हम क्या समझ रहे हैं, डोंट फोकस ऑन द रोल कि हम कितने बड़े प्रचारक हैं, छोटे प्रचारक हैं, फोकस ऑन द गोल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसी को, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम अगले रविवार को कुछ और उदाहरण लेंगे रोल वर्सेस गोल के ऊपर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हम भी प्रार्थना करें श्री श्री राधा मदन गोपाल जी से कि हम भी जो मक्खी के समान हैं, कि किसी साधु की कृपा से, वैष्णव की कृपा से, हम भी किसी फूल में अटक कर राधा मदन गोपाल जी के चरणों तक पहुंचे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। किसी का कोई प्रश्न? एनी क्वेश्चंस एनीवन हैज़?